एक्सरसाइज मस्ट होती है, कितना सोया जाए, ये सारे वो चीज़ें जो आज हमने ज़ाहिर कवर नहीं की. हमने वाइटामिन्स को कवर नहीं किया. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स जिसके बारे में आम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आप बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो यंग नज़र आ रहे होते हैं. ख़ासतौर पर ख़वातीन बहुत कंसर्न होती हैं इस हवाले से. तो एंटीऑक्सीडेंट फूड में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो इंसान को यंग रखने में और यंग नज़र आने में उस एंटीऑक्सीडेंट का बहुत रोल होता है. दे हैव अ वेरी क्रूशल रोल इन हाउ पीपल लुक. तो एजिंग एक जो है, जो उम्र का बढ़ना जो है वो एक फिनोमेना है. थोड़ा सा इसको देखिएगा, एजिंग जो है वो एक फिनोमेना है. आपकी उम्र जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम जो मौत की तरफ जा रहे हैं, इसका पूरा एक केमिकल प्रोसेस है अंदर. प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है. और कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर ये भी मौका मिला इंशाल्लाह तो ये आराम से आसान लफ्ज़ों में करेंगे. अगर आप लोगों को भी जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिए. जी जी इस मोनोक्साइड सल्फेट लेसिथिन इन चॉकलेट मेट मेक इट बैड फॉर हेल्थ. इस मोनोक्साइड सल्फेट लेसिथिन इन चॉकलेट मेक इट बैड फॉर हेल्थ. देखिए चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स के हवाले से तो मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन चॉकलेट में जो कोकोआ होता है जिसको जो मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट का, वो उसके फ़ायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे उसके ज़्यादा हैं. बच्चे अगर सॉलिड चॉकलेट खा रहे हैं, वो देखिए बेल्जियम वाली चॉकलेट जो होती है, थोड़ी सी जो डार्क चॉकलेट जिसे आप कहते हैं, जो थोड़ी सी कड़वी भी होती है, वो खांसी के लिए बहुत अच्छी है. तो चॉकलेट जो है बेसिकली मैं लेसिथिन और मोनोक्साइड सल्फेट का तो मुझे नहीं आइडिया, इसको मुझे सर्च करना पड़ेगा इसका कि क्या है सिलसिला. लेकिन ओवरऑल मैं चॉकलेट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मिल्क चॉकलेट और ख़ास तौर पे जो प्योर चॉकलेट है जिसको आप कड़वी चॉकलेट या डार्क चॉकलेट कहते हैं, वो सेहत के लिए अच्छी है. और जो डार्क चॉकलेट है वो एडल्ट लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जो हार्ट डिजीज़ नहीं है, वो भी मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं. वीक में एक दफ़ा छोटा बाइट आपने एक छोटा टुकड़ा खा लिया. तो चॉकलेट ओवरऑल बच्चों के लिए अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है. और इसके साथ साथ अगर डार्क चॉकलेट खा रहे हैं, अगर खांसी में दे रहे हैं, तो खांसी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है बच्चों में डार्क चॉकलेट खाना. तो दैट्स इट. तो मैं चॉकलेट पे कमेंट कर सकता हूँ कि ओवरऑल चॉकलेट खाना जो है वो नुकसानदेह नहीं है सेहत के लिए, ख़ासतौर पर बच्चों और एडोलेसेंट्स के लिए, अनलेस कि आप उसको डेली कंज्यूम करें और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें. कैनोला का ओरिजिन तो मेरे ख्याल में सीड्स है ना, कैनोला सीड्स जो होते हैं. जी अच्छा, भाई का सवाल है कि कैनोला जो ऑयल होता है उसका ओरिजिन कहाँ से है. तो एज फार एज आई नो कैनोला का ओरिजिन जो है वेजिटेरियन है, और ये प्लांट से मिलता है, कैनोला का प्लांट होता है. और कैनोला जो है वो बॉडी बिल्डर्स और जो मसल बनाने वाले होते हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करते. उसकी कुछ वजूहत हैं जिसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी, मेरे आप जैसे आदमी के लिए या खातून के लिए कैनोला ऑयल जो है वो बेहतरीन है और सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू ओलिव ऑयल. लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है ओलिव ऑयल में पकाना या सनफ्लावर में पकाना, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि वो कम अज़ कम, अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो ये कि वो चीज़ें वेजिटेबल ऑयल में पकाए, दूसरे सस्ते ऑयल्स में, लेकिन वंस इन अ वाइल वीक में एक दफ़ा दो दफ़ा जो है ओलिव ऑयल में भी पकाए. वो कैनोला ऑयल से बेहतर है ये ओलिव ऑयल, लेकिन कैनोला भी बुरा नहीं है.
सनफ्लावर कॉर्न ऑयल में कौन सा बेटर,
कौन सा बेहतर है? बेहतर का एक्चुअली हाँ कितना सनफ्लावर और जो कॉर्न ऑयल है, इस बारे में तीन चार क्राइटेरिया हैं आपके. पहले तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, कि न्यूट्रिशन अच्छा, यानी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. मेरे ख्याल में दोनों इक्वली बेहतर हैं. कभी हमने कोई रिसर्च में या किसी इंटरनेशनल पब्लिश्ड स्टडीज़ में किसी क्लिनिकल ट्रायल में बुराई नहीं सुनी कि कॉर्न ऑयल जो है वो बुरा है. अलबत्ता टेस्ट कुछ लोगों को उसका नहीं होता, पसंद आता कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ज़्यादा पसंद किया जाता है आमतौर पर, जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में सनफ्लावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्न ऑयल. मुझे महंगाई का नहीं पता कि ज़्यादा महंगा कौन सा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बेहतर हैं, कोई इसमें इसकी कोई वो नहीं मिलती.
सनफ्लावर और कॉटन सीड एक जैसा नहीं होता, कॉटन सीड में तो बहुत ज़्यादा वो होता है.
इसलिए आपको कोई अच्छा बायोकेमिस्ट सही तरह बताएगा. ऑनेस्टली मैं उसके हेल्थ इफेक्ट के हवाले से बता सकता हूँ कि हेल्थ इफेक्ट उसका क्या होता है. हेल्थ के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि सनफ्लावर और जो आपका ये जो कॉर्न ऑयल, दोनों आपकी बेस्ट है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जरूर भाई। जी जी, अगर नॉर्मल आदमी है जिसको शुगर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम हो। खजूर खाना बहुत अच्छा है, और खजूर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फाइबर बहुत होता है, प्रोटीन बहुत होता है, अच्छा वाला प्रोटीन। जो खजूर रोज़ाना खाएगा, दो से तीन समझ लीजिए कि सर्विंग्स, दो तीन खजूरें खा रहा है रोज़ाना, सुबह सहरी में, सुबह नाश्ते में, अगर रोज़ा नहीं है तो देयर आर 50-60% चांसेस कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और भी फ़ायदे हैं खजूर के, बहुत ज़्यादा। खजूर को मतलब अगर दूध के साथ कंज्यूम करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गोश्त, जो बहुत से लोग, जैसे भाई ने सवाल पूछा था, आपने शायद पूछा था, यस यू आस्क मी दैट व्हाट कुड बी द वन ऑफ द वेज टू इंक्रीज योर वेट और टू गेन मास, राइट? सो कंज्यूमिंग मैंगोज एंड डेट्स विद मिल्क इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू गेन वेट एंड मसल, प्रोटीन, नॉट चिकनाई, नॉट चर्बी। सो खजूर का फ़ायदा है। रोज़े पे एक अलहदा बहस है जो आज हमने बेसिकली कवर नहीं की, कि रोज़े में आपके अंदर क्या चल रहा होता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और यही वजह है कि जब आप पूरा दिन रहने के बाद अफ्तार करते हैं, ख़ास तौर पे शुरू के दिनों में लगता है आप बिल्कुल लिट गए, आपके सर भारी होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ब्लड फ्लो है, जो ब्रेन में आपके हर ऑर्गन में मुस्तकिल कंटिन्यूसली ब्लड जा रहा है, राइट, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, जब आप रोज़ा करते हैं अफ्तार, तो पूरा जब आपका एकदम से पेट जब फुल होता है तो सारा ब्लड, जो मेन जो पोर्शन है ब्लड का, वो चला जाता है टू योर स्टमक, तो फिर सर भारी होना शुरू हो जाता है आपका, और हार्ट में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। यही वजह है कि अब तमाम कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो यूनानिमसली एग्री करते हैं कि खाने के फौरन बाद, जैसे पहले बुज़ुर्ग कहा करते थे कि चलना ज़रूर चाहिए रात के खाने के बाद, अब बिल्कुल मना है। एक नॉर्मल आदमी को भी खाने के फौरन बाद चलना नहीं, टहल ले आहिस्ता आहिस्ता, हार्ट पेशेंट तो टहले भी नहीं, लेकिन वो जो ब्रिस्क वॉक जिसे आप कहते हैं, जल्दी जल्दी चलना, जिसमें आपकी सांस फूल रही है, जिसमें आपको पसीना आ रहा है, वो खाना खाने के बाद हरगिज़ नहीं। वजह इसकी ये है कि सारा ब्लड जा रहा है स्टमक पे, अगर खुदा ना खास्ता आपके हार्ट में पहले ही ब्लड कम है तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पे और बढ़ जाएंगे। जी तो जी सॉरी जरूर भाई, आपको मैंने परेशान किया माइक के हवाले से। क्या ओलिव ऑयल को पकाने से उसके हार्म, क्या उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है, या कोई भी ऑयल गर्म करने से उसकी खासियत ख़त्म हो जाती है? जो ऑयल्स पहले से ही बन चुके हैं, यानी जो जिस मैन्युफैक्चर्ड हालत में, प्रोड्यूस्ड हालत में हमारे पास आ रहे हैं, उसको गर्म करने से उसकी खासियत ख़त्म नहीं होती। ये बेसिकली वैसे सवाल हेल्थ से ज़्यादा ही केमिस्ट्री से रिलेटेड आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन ओलिव ऑयल को पकाने से, ओलिव ऑयल को ज़ाहिर हम पका कर ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाने की अगर हम बात करें तो उसमें चीज़ें पका के इस्तेमाल की जाती हैं, और जितनी भी रिकमेंडेशन, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि ओलिव ऑयल में अगर हम चीज़ें पकाएं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो आई डोंट थिंक कि ओलिव ऑयल को पकाने से कोई हार्मफुल इफेक्ट पैदा होता है। हाँ, अलबत्ता कुछ वाइटमिन ऐसे हैं सब्ज़ियाँ कि अगर आप उनको ज़्यादा पका लेते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिटिव पावर होती है, पोटेंसी होती है, वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जैसे विटामिन सी है जो कीनू में पाया जाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है, अगर आप उसको पका लें, मतलब जिन सब्जियों में भी पाया जाता है, रसदार सब्जी, जिस चीज़ में, जिस फल या सब्ज़ी में रस है उसमें विटामिन सी है, उसको आप पका लेंगे तो दैट विड बी एलिमिनेटेड। तो ये है कि, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं कि ओलिव ऑयल को पकाने से जो है वो उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट होता हो, मैंने कभी नहीं पढ़ा। और जाहिर है कि जो हमने रिकमेंडेशंस पढ़ी हैं उसमें एक मौजूद है कि आप चीज़ें ओलिव ऑयल में पका के खाएं, इसका मतलब है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता होगा। तो ये है जी। और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, my question is that why do you want to increase your metabolism?
So you can become lose fat faster and build muscle.
Well, metabolism is a normal physiologic process, right? Whatever you eat, it has to burn, right? It has to be burned. And metabolism ko fast karne ke do tarike hain. There are two ways of enhancing or speeding up your metabolism. Number one, eat fast burning foods. वो फूड्स खाएं जो फास्ट बर्न हो रही हैं. बर्न मींस जल्दी मेटाबोलाइज हो रहे हैं. दे आर बीइंग रैपिडली मेटाबोलाइज्ड. फॉर एग्जांपल सीरियल्स. इफ यू ईट सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट इट विल स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म. इफ यू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वुड इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. द सेकेंड वे ऑफ इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिज्म इज एक्सरसाइज. Whatever comes in has to go out, right? And metabolism is one of the ways to expending your energy, to enhance your energy expenditure. Jitni zyada aap exercise karenge, aapka metabolism utna zyada fast hoga. Aasan lafzon mein isko Urdu mein aap aise keh sakte hain ki cheezon ko hazm karne ki jo process hai usko kehte hain metabolism. Aur hum sab jante hain ki hum jab koi cheez khaye uske baad agar hum physical activity karein, एक्सरसाइज करें, तो वो हमारा जो बॉडी में जो हम चीज़ें खाते हैं वो जल्दी दे मेटाबोलाइज वेरी फास्ट. सो देयर टू वेज ऑफ इन्हेंसिंग योर मेटाबॉलिज्म. नंबर वन, ईट मेटाबॉलिज्म हाई कैलोरी बर्निंग फूड्स. यू कुड जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप कैलोरी बर्निंग फूड्स, राइट, और रैपिड मेटाबॉलिज्म फूड्स, एंड यू कुड कम अप विद अ नंबर ऑफ different food sources to increase your metabolism. And second, you have to exercise as much as possible, especially in your age, it's very vital. So, or did acha sorry acha ye maine address nahi kiya aur nahi kiya. Does mirchi make you skinny and kaddu make you obese? No, I don't think so. लाल मिर्च जो होती है वो जो है वो कहते हैं कि उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं लाल मिर्च के. अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट की हालत में खा रहे हैं, ऐसे तो ज़ाहिर नहीं खा सकते. थिन होना जो है ना, वो इस जितना हम आसान समझते हैं कोई जादू का चिराग नहीं है कि जो आपको थिन कर देगा. इट्स अ स्लो ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव प्रोसेस दैट कुड टेक्स अप टू वीक्स, मंथ्स और ईयर्स डिपेंडिंग ऑन योर वेट, एज एंड सर्कमस्टांसेस एंड लाइफस्टाइल. बट कद्दू आपको भी नहीं बनाता, ये बिल्कुल गलत बात है. कोई भी चीज़, सॉरी इसको उठा लीजिए, कोई भी चीज़ जो है वो अगर आप खा रहे हैं और उसको बाहर यानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यानी जो चीज़ आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, आइदर इट इज़ वेजिटेबल, आइदर इट इज़ एनिमल फूड, आइदर इट इज़ मीट और वट एवर, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी. वो आपको वक्ती तौर पर भूख तो ख़त्म कर देगी लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन आपको हासिल नहीं होगा. तो लौकी, कद्दू मेरे ख्याल में लौकी को बोलते हैं ना, आई थिंक, जी. तो लौकी तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है, यस, बल्कि डेफिनेटली अच्छी चीज़ है. बल्कि कुछ जगह तो ये भी आता है कि सुन्नत रसूल भी है ये लौकी जो है, लौकी का सालन. तो लौकी तो जिसको आप इंग्लिश में स्क्वैश बोलते हैं आई थिंक, वो कंज्यूम करना बहुत अच्छा है. एक चीज़ याद रखिएगा कि वेजिटेबल्स जो भी हों उनमें जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रीन और लीफी हैं, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल ग्रीन होगी, ये मैं उन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ जो लाइट ग्रीन होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, जितनी वेजिटेबल में पत्ते हैं, पत्तों वाली, जैसे सलाद है, जैसे लेटस है, स्पेनिच है, एग्जैक्टली, और जितना डार्क कलर है उसका वो उतनी अच्छी है. ये एक टिप है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा आपका वो है ग्रीन वेजिटेबल है वो आपको अच्छा है. इसी तरह लेकिन वो उसूल भी याद रखिएगा कि अगर आपकी समझ में ना आए कि मैंने आज कितनी वेजिटेबल, कितने फ्रूट, कौन कौन से खाने, तो वो रैम्बो प्रिंसिपल याद रखिएगा. It has to be of different color, like orange or red or green or light green or yellow. चार से पांच different color की सब्जियां और फल अगर आपने खा लिए रोजाना, तो ये best आपका जो है वो इंशाल्लाह नीड पूरी करेगा सब्जियों की. आप कहते हैं कि जो भी खाएं उसको बर्न करना होता है, तो पहले के पुराने ज़माने में तो औरतें कोई काम नहीं करती थी, तो उनका बर्न कैसे होता था? ये तो ख़तरनाक सवाल है. नहीं, इसमें एक चीज़ है, देखें पहले ज़माने में दो चीज़ें होती थी. पहले जो ख़वातीन थी वो बर्न बिल्कुल होता था, वो चक्की पीसने से लेकर जो है वो बागवानी तक वो खुद करती थी. पाँच पाँच छः छः, तो आजकल बच्चे होते हैं, उस वक्त आठ आठ दस दस बच्चों को अकेले संभाला करती थी, बर्तन खुद धोती थी, सारा काम वो खुद करती थी. इस तरह उनका उनकी कैलोरी बर्निंग होती थी. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उस वक्त की जो फूड होती थी वो खुद बजाय खुद जल्दी बर्न होती थी. वो जेनेटिकली इंजीनियर फूड नहीं होती थी, वो इम्प्योर फूड नहीं थी, वो खालिस फूड हुआ करते थे. तो एक तो उनका लाइफस्टाइल खुद बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था, और उसके अलावा जो वो फूड कंज्यूम करती थी वो खालिस होती थी, वो इम्प्योरिटीज से पाक होती थी, वो बैक्टीरिया जर्म से पाक हुआ करती थी। तो इस वजह से, और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हमें नहीं मालूम कि हम जो सुनते हैं कि फलां बुजुर्ग जो हैं वो जल्दी जवानी में फौत हो गए थे, फलां को ऐसे हो गया अचानक चटपट फौत हो गए, वी नेवर नो कि उनको क्या बीमारी हुई। बीमारियाँ तो अब जाकर जो है वो डायग्नोस हो रही हैं, पता चल रहा है एड्स है, हेपेटाइटिस सी है, पहले तो वजूद ही नहीं था, पहले वजूद था दरियाफ्त नहीं हुई थी, हमें मालूम नहीं था कि ये बंदा जो है, कायदे आज़म की मिसाल ली जाती ट्यूबरक्लोसिस, उस वक्त लाइलाज हुआ करती थी, उनको ट्यूबरक्लोसिस था, तो बीमारियाँ मौजूद थी हमें पता नहीं चलता था। तो ये कहना कि पहले ज़माने की और ख़वातीन को मर्दों को बीमारियाँ नहीं होती थी, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये ज़रूर है कि फूड खालिस और लाइफ स्टाइल हेल्दी होने की वजह से वो अब की नस्बत कम बीमार होते थे। यह जी डेफिनेटली खाना हजम करने के लिए वॉक करना चाहिए, लेकिन वॉक में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद अगर वर्क नहीं कर रहे तो कैलूला अच्छा, 1 घंटा कैलूला मीन्स कि आप सो नहीं रहे लेकिन आंखें बंद करके स्ट्रेट लेट गए और अपनी जो आपने थिंकिंग है वो एक पॉइंट पे मरकूज कर ली, कोई आप तस्बीह पढ़ लें, कोई मतलब इसमें आज़म पढ़ लें या कोई वजीफा पढ़ लें, दुनिया की चीज़ों से खाली कर लें, एक सम सॉर्ट ऑफ मराकबा भी हो जाएगा ये, जिसको आप कैलूला कहते हैं। सो भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वॉक जो है मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन 2 से 3 आवर्स का वक्फा होना चाहिए ताकि पेट से इंटेस्टाइन में जा चुका हो खाना आपका, तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। वॉक मस्ट है, आधे घंटे वॉक करना मस्ट है, हर लड़के लड़की खातून मर्द रिगार्डलेस ऑफ एज आधे घंटे वॉक करनी है। और वॉक करने का ये मतलब नहीं कि आप सर्दी में निकल गए या ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, आधे घंटे वॉक करने का मतलब ये सुबह आपने 10 मिनट कर ली, दोपहर में 5 मिनट कर ली, रात में 15 मिनट कर ली, ये आधे घंटे की वॉक हो गई। ये मतलब नहीं कि इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस, यस राइट, तो इसका मतलब नहीं कि आप 30 मिनट डेली वॉक कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते आप नहीं करें, आप स्टेयर्स खुद चढ़ के जाएं अगर आपको इंजाना है। ये मैं फिर वही बात कि मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको कोई ऑलरेडी डिजीज नहीं है, स्टेयर्स चढ़ के जाएं, अपनी गाड़ी जो है वो दूर पार्क करें मॉल से, और इसके साथ साथ मतलब जो भी फिजिकल काम आप कर सकते हैं, सामान उठाना है, ग्रॉसरी करना, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में शुमार हो रही हैं। एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं कि आप साइकिल पकड़ के जो बाहर खड़े हुए जिम ज्वाइन कर लिया आपने, वॉकिंग बेहतरीन एक्सरसाइज है जो सब कर सकते हैं और इससे आपकी एक्सरसाइज की नीड पूरी हो रही है। अब एडिशनल करना है जो तो अलग बात है। जी
क्वेश्चन मेरा ये था कि ये एक्सरसाइज के हवाले से एक जगह मैं देख रहा था कि उसमें आर्टिकल में ये था कि खुदा ने इंसान की बॉडी को यानी कि ऐसा बनाया है कि उसको हर 4 घंटे बाद यानी कि हिलजुल ज़रूर करने हैं, यानी कि बैठे नहीं रहना, यानी कि उसको जो है थोड़ा बहुत वॉक करना है या अपने आप को स्ट्रेच करना है।
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिही
तो उसमें ये था कि यानी कि उसको जो है करना है। अब एक्सरसाइज तो आपने कहा जैसे कि भाई हर यानी आधा घंटा आपने करनी है, लेकिन कितने वक्फे के साथ करनी है? जैसे उसमें ये था कि भाई एटलीस्ट आपको जो है 4 घंटे के बाद अगर आप कहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू वॉक समथिंग।
एग्जैक्टली जी जी,
तो वो उसके बारे में आप कुछ कहें कि यानी कि कितने वक्फे के बाद करनी?
इसका कोई स्पेसिफिक वक्फा नहीं है, जब आपकी बॉडी के लिए कन्वीनियंट हो, जब व्हेन यू फील लाइक डूइंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो बॉटम लाइन है, जो आमतौर पे जो मिथ है या जो गलत समझा जाता है कि हमने 30-40 मिनट्स वन गो में एक्सरसाइज करनी है, ये कर ले तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपका लाइफ स्टाइल इजाज़त नहीं दे रहा आपको 40 मिनट एक्सरसाइज 30 मिनट एक्सरसाइज करने की वन गो में, तो आप इसको 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद कर लें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप जो आपका सवाल है कि मैं 4 घंटे बाद ही करूंगा अगली 10 मिनट की एक्सरसाइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सुबह और शाम में डिवाइड कर सकते हैं, सुबह और रात में डिवाइड कर सकते हैं। रात में इसलिए मुश्किल है कि कनाडा का लाइफ स्टाइल सर्दी की वजह से खास तौर पे और आपके वर्किंग की वजह से इजाज़त नहीं देता कि आप 11 बजे निकल के टहलें अगर आपने 9 बजे खाना खाया। खाने के फौरन बाद आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड और कि इतना गैप होना चाहिए आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में वर्कआउट में। जी जी
जी
मौलाना साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, आई वुड लाइक टू बी रियली क्विक नाउ. पहली चीज़ ये कि सोना, आपके तीसरे सवाल से शुरू करता हूँ, पहले 6 to 8 hours एडल्ट्स के लिए नींद मस्ट है, मिनिमम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए. आपके एक आम आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसका जो रोज़ाना जॉब कर रहा है, जो या खातून जो काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक एटलीस्ट 6 to 8 hours. 8 hours से ज़्यादा सोना नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल तो नहीं मतलब एक्सेसिव हो जाएगा, और 6 घंटे से कम जो है वो अफेक्ट करेगा. अब आपका पहला सवाल कि सहरी के बगैर सो जाना, तो सहरी जो है वो यकीनन वो रिकमेंडेड है, और उसका वही जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया था कि नाश्ता ना करने के जो नुकसान आते हैं वो सहरी ना करने के उससे ज़्यादा नुकसान आते हैं, क्योंकि गैप ज़्यादा हो रहा है. नाश्ता ना करके आप फिर भी दोपहर में खाना खा लेंगे, लेट कुछ खा लेंगे. सहरी करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो आपके ब्रेन में जो ग्लूकोज की मकदार है, जो आपके ब्रेन और आपकी बॉडी का फ्यूल है, वो बहुत कम हो जाएगी. सहरी उस ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाती है आपके ब्लड में, आपकी एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू वर्क, ये इंक्रीज करेगी ग्लूकोज की वजह से. सहरी करना अगर आप मेडिकली देखें तो मैं तो कहूँगा ये वाजिब होना चाहिए, और इस्लाम में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस किया गया कि सहरी, और बगैर किसी रीज़न के आपको सहरी नहीं छोड़नी चाहिए. और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था भाई? नहीं, ये मैंने अभी इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च है ये मैं आपको नहीं, ये मैं आपको बता चलूँ कि अगर आप खाने के फ़ौरन बाद लेट के सो गए, ये डेंजरस है. क्यों डेंजरस है? जब आप लेट जाएंगे तो आपके मेदे में जो एसिड है, आपने खाना खाया, वो हज़म नहीं हुआ, वो नीचे नहीं गया, ठीक है? तो वो एसिड जो है, जब आपने खाने के फ़ौरन बाद, एसिड जो मेदे का होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है जब आप खाना खाते हैं. खाना खाने के फ़ौरन बाद वो ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है. जब आप जैसे ही लेटे, जिस वक्त लेटे आप, एसिड की सिक्रेशन अपनी पीक पर है, और जब आप जैसे ही लेटे तो वो एसिड जो है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसको आप उर्दू में आसान लफ्ज़ों में कहते हैं खट्टी डकार आना, और वही चीज़ आगे बढ़कर डिजीज़ बन जाती है, जिसको आप कहते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, या मेडिकल में गर्ड कहते हैं, या आप कह लें उसको तेजाबियत, एसिडिटी की प्रॉब्लम, और आगे चलकर वही चीज़ अल्सर बन जाती है. खाना खाते के खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना चाहिए, आई स्ट्रांगली डिसएग्री. ये तो एक सवाल और रह गया, क्योंकि मौलाना साहब आ चुके हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मजीद देखें क्योंकि ये सवालों का सिलसिला जो है चलता रहेगा. भाई का भी एक सोच है, मैं सुन लूंगी जैसे मुझे. डार्क ग्रीन में करेले भी आते हैं, ग्रीन में आते हैं, डार्क ग्रीन का मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है करेले पे वो डार्क ग्रीन है कि नहीं. और करेले तो पकते ही खूब ग्रे करके हैं, तो करेलों को कैसे खाएं? करेलों को आप बिल्कुल खा सकते हैं. करेला इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स टू डिटॉक्सिफाई योर ब्लड क्लीन करने का. बिल्कुल खाएं और पका के खाएं, कोई इशू नहीं है उसमें. कनाला ऑयल या ऑलिव ऑयल एक वक्त में तकरीबन कितना डाल के खाना बताना चाहिए, ये आपको किसी कुकिंग रेसिपी में चेक करना चाहिए या गूगल करना चाहिए. मैं ऑनेस्टली नहीं बता सकता कितना खाना चाहिए, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए डेली रिकमेंडेड, तो मेरे ख्याल में 2 to 3 सर्विंग्स जो है वो एक खाने में चम्मच जो है वो कम अज़ कम आपको डालना चाहिए, तो वो नॉर्मल है. पूरे घर के लिए जो खाना बन रहा है उसमें कम अज़ कम 1 to 2 चम्मच तो है वो होना चाहिए. मेरे ख्याल में जितना आप नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, फर्क सिर्फ ये कि उतना यूज़ करें, लेकिन ओलिव ऑयल या कनोला यूज़ कीजिए. जी आप कुछ भी
जी जी, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस का चल रहा है, वहाँ पे लोग यदि कि मूली और सलजम का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं कि उनका हेपेटाइटिस या कंट्रोल हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, आप क्या कहते हैं इसका?
हेपेटाइटिस ए जो है, जिसको आम यरकान या जॉन्डिस कहते हैं, उसमें मूली का इस्तेमाल अच्छा कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाता है ऑलरेडी. हेपेटाइटिस ए जो आम यरकान है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, जिसको पीलिया कहा जाता है, वो तो ऑलरेडी 1 to 1.5 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है. हेपेटाइटिस बी और सी जो है अभी तक लाइलाज है, परमानेंट, अगर वो क्रोनिक हो जाए या पक्का हो जाए, उसमें मूली और ये जो आप बता रहे हैं उसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका. तो